पृष्ठ संख्या 156। इस बात को ना भूलना चाहिए कि इस नए मध्य वर्ग की उत्पत्ति का प्रभाव बड़ा व्यापक था। भारतवासियों को धर्म के प्रति स्वतंत्रता दी गई थी और इसने उनको एक अनुचित मार्ग पर डाल दिया। उन्होंने अपनी समस्याओं को सामान्य राष्ट्रीयता की दृष्टि से देखना छोड़ दिया और उसके स्थान पर झूठी धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ लेकर अपने सहधर्मियों के साथ आगे बढ़ने की चेष्टा करने लगे। यदि एक ओर अंग्रेजी साम्राज्य के दबाव और समान आर्थिक समस्याओं के कारण वह हिंदू मुस्लिम एकता की दृष्टि से विचार करने पर मजबूर होते थे, तो दूसरी ओर अपने अपने धर्मों के क्षेत्र में उन्नति की भावना उत्पन्न करके वह अपने विचारों को सीमित कर लेते थे। भारतेंदु और उनके साथी एक प्रकार से धर्म भीरु कहे जा सकते हैं, क्योंकि वे साधारणतः हिंदुओं को ही उन्नति की ओर पुकारते थे। इसी प्रकार आज़ाद, हाली, नज़ीर अहमद, सिवली, अकबर मुसलमान मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। एक ओर आर्य समाज के आंदोलन का जन्म हुआ तो दूसरी तरफ मुस्लिम सुधारवादी तहरीकें चलीं, जिनमें विचारों की दृष्टि से बहुत सी बातें समान थीं। अब यदि इसी बात को अंग्रेजी साम्राज्य के उत्थान की पृष्ठभूमि में देखें, तो यह बात हमारी समझ में ज़्यादा आसानी से आ जाएगी कि सुधारवाद की यह जड़ और पृथकतावादी उन्नति प्राप्त करने की भावनाएं उससे क्या संबंध रखती हैं। हमें इस बात पर तनिक भी चकित ना होना चाहिए कि हिंद हिंदू हिंदुस्तान का नारा न केवल धार्मिक सुधारकों ने ही लगाया, वरन उस युग के अच्छे अच्छे लेखकों और कवियों ने भी लगाया। मुसलमान लेखकों और कवियों में यही बात मुसलमानों के लिए नौकरियों में अलग जगहें, शिक्षा तथा असेंबलियों में नियमित संख्या और अंग्रेजों की ओर से उदारता का व्यवहार प्राप्त करने की मांग के रूप में मिलेगी। परंतु साहित्य में यह धार्मिक रंग वास्तव में जागृति की भावना का एक प्रतिबिंब था। यह शक्ति प्राप्त करने का एक ढंग था। उस युग के सभी अच्छे हिंदी उर्दू लेखकों में यह दोहरी धाराएं देखी जा सकती हैं। एक ओर वह रूढ़िवाद और कट्टरपन से लड़ते दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर धार्मिक आदर्शों और अतीत गौरवगान के द्वारा देश को जागृत करते हुए देख पड़ते हैं। जहाँ तक देशभक्ति कट्टरपन का विरोध, उद्योग धंधों और व्यापार को प्रोत्साहन देना, समाज सुधार, शिक्षा और नीति के विचारों में परिवर्तन का संबंध है, सबके सब प्रगतिशील शक्तियों के एक ही स्रोत से प्रेरणा लेते थे, जो कि उस युग के गर्व से उत्पन्न हुआ था। इस पृष्ठभूमि को सामने रखकर कविता, उपन्यास, आलोचना, पृष्ठ संख्या 157, जीवनी, नाटक, इतिहास और निबंध लिखे जाते थे। इसके प्रकाश में नए विचारों की सहायता से धर्म को नए प्रकार से प्रस्तुत करते थे और रूढ़िवादियों के क्रोध का निशाना बनते थे। सामाजिक और राजनीतिक सुधार के संबंध में उनकी वाणी एक ही प्रकार की भावनाओं को अभिव्यक्त देती थी, परंतु ऐतिहासिक परंपराओं में भेद होने के कारण कुछ विभिन्नता भी मिल जाती है। इस समय के हिंदी और उर्दू साहित्य में जो एक बड़ा अंतर पाया जाता है, उसको भी देख लेना आवश्यक है। आधुनिक हिंदी में लोकगीतों की परंपराएं अपना नाता भारत के विभिन्न बोलियों से जोड़ सकती हैं। इसकी अपेक्षा उर्दू का नाता उनसे जोड़ना सरल नहीं जान पड़ता। इसका प्रभाव जनसाहित्य के विकास पर अब तक पड़ता चला जा रहा है। भारतेंदु ने लोक साहित्य के महत्व पर जो जोर दिया है, उर्दू साहित्य में उसका उल्लेख कम है। हाल ही ने मेरठ के एक जन कवि दलमीर के काव्य संग्रह पर एक लेख लिखा है, जिससे पता चलता है कि उर्दू के साहित्य रूपों में भी जनता की बोली से काम लिया गया था। पर इस धारा की प्रगति आगे नहीं मिलती। आजकल जो गीत लिखे जा रहे हैं, वह अलबत्ता हिंदी और उर्दू में एक ढंग रखते हैं। राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि मध्यम वर्ग मूलविहीन होते हुए भी शक्ति संचित करता जा रहा था। कभी वह अंग्रेजी साम्राज्य से समझौता कर लेता था और कभी तलवार खींचकर अपने अधिकारों के लिए उससे लड़ने पर तैयार हो जाता था। 19वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रीय भावना भारतीय शिक्षित वर्ग में जड़ पकड़ चुकी थी। एक शक्तिशाली दफ्तरशाही के अधीन और यातायात की सुविधाओं के कारण एक राष्ट्र का विचार उत्पन्न हो जाना असंभव न था। आर्थिक दृष्टिकोण से भारत का बढ़ता हुआ पूंजीवादी वर्ग विदेशियों के हाथ से शक्ति लेकर यहाँ की जनता का शोषण करना चाहता था। भारतीय जनता का खून चूसते हुए अंग्रेजों को 100 वर्ष से अधिक हो चुके थे। अब यहाँ के पूंजीपति भी अपने अधिकारों को काम में लाना चाहते थे। अंग्रेजों ने यहाँ के ग्राम में आर्थिक जीवन को क्षीण बनाया था और यहाँ के उद्योग धंधे नष्ट कर रहे थे। यही नहीं, यहाँ के लोगों से धर्म और भाग्य पर विश्वास करने की शक्ति भी छीन ली थी। अब उनके पास कुछ शेष नहीं था जो देकर भारतवासियों को संतुष्ट रख सकते। जनता दिन प्रतिदिन दरिद्र होती जा रही थी। अकाल और महामारी का प्रकोप कहीं न कहीं अपना टैक्स वसूल कर ही लेता था। स्वतंत्र व्यापार ने भारतवर्ष को साम्राज्यवादियों की मंडी बना दिया था। किसान बिना खेत के मूलविहीन होकर शहरों में मारे मारे फिरते थे। देश की इस स्थिति ने उस नई चेतना का सहारा लेकर क्रांतिकारी जन आंदोलन को जन्म दे दिया। प्रथम महायुद्ध चीन, ईरान और तुर्की की राजनीतिक क्रांतिकारियां तथा रूस की जन क्रांति, सभी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को शक्ति पहुंचाई और जागरण की भावनाओं को इतना उत्तेजित कर दिया कि अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा के भाव के साथ साथ ऐसे प्रत्येक वर्ग से संघर्ष छिड़ गया जो पृष्ठ संख्या 148 जनता का शोषण करके ऊपर उठना चाहता था। लेखकों और कवियों में हम यह सभी बातें देख सकते हैं। भारत की किसी भी भाषा को लिया जाए, इस महान जागृति के बारे में विचारधाराओं की समानता मिल जाएगी। एक ही पृष्ठभूमि है, स्वतंत्रता का आंदोलन है। आर्थिक समानता और क्रांति के लिए संघर्ष, इसलिए एक ही ढंग का साहित्य उत्पन्न हो रहा है। यह और बात है कि इस साहित्य का एक बड़ा भाग समसामयिक है। राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के इस काल में उर्दू के वह साहित्यकार पैदा हुए जो एक दृष्टि से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नेता भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साहित्य और जीवन को मिलाया और अपनी मानसिक शक्तियों को विशेष उद्देश्यों के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। इस नए आंदोलन के नेता सर सैयद थे। यद्यपि साहित्यिक दृष्टि से उनका स्थान आज़ाद, हाली, नज़ीर अहमद और शिवली के बाद है, परंतु सभी बातों को मिलाकर देखा जाए तो वह इन सबसे बड़े ठहरते हैं। इसीलिए इसको सर सैयद का युग कहा जाता है। इस युग के सभी अच्छे गद्य और पद्य लिखने वाले इस बात का अनुभव करते थे कि वह साहित्य के द्वारा जीवन की उस तड़प और व्याकुलता का चित्रण कर रहे हैं जो मानव जाति को बंधनों से छुड़ाती है और उन्नति की ओर ले जाती है। चूंकि साहित्य का संबंध लेखक की चेतना और वर्ग विभाजित समाज में उसके संपर्कों पर आधारित है, इसलिए एक ही युग में कई बानियां बोलने वाले लेखक और कवि मिल जाते हैं। इस अनेक रूपता को केवल व्यक्तित्व का परिणाम नहीं कहा जा सकता, बल्कि सामाजिक चेतना का भावपूर्ण रूप है। इस अध्याय में नवचेतन से ओतप्रोत तथा रीतिकालीन परंपराओं पर चलने वाले उन कवियों का उल्लेख किया जाएगा जिन्होंने किसी प्रकार से महत्व ग्रहण किया है। नई कविता के निर्माता मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद समझे जाते हैं। गदर के बाद जब आज़ाद ने लाहौर के शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी कर ली तो वहाँ उन्हें अनेक अंग्रेज विद्वानों के संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह स्वयं दिल्ली कॉलेज के विद्यार्थी रह चुके थे, विचार और ज्ञान की नई धाराओं से परिचित थे और जब उन्हें इन अंग्रेज विद्वानों ने प्रेरित किया तो उन्होंने नई कविता की रूपरेखा अपने सहयोगियों और देशवासियों के सम्मुख रखी। अगस्त 1867 ईस्वी में उन्होंने एक व्याख्यान देते हुए पूर्वी काव्य रचना, विशेषकर उर्दू और फारसी कविता की त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि कविता को मानव जीवन और प्रकृति के सभी अंगों पर प्रकाश डालने के दायित्व का वहन करना चाहिए जो दुर्भाग्यवश नहीं होता है। यद्यपि हमारी काव्य रचना को केवल कुछ विषयों में सीमित करके ही हमारे पूर्वजों ने महान रचनाएं की हैं, परंतु अब तक हम उन्हीं की लकीर पीट रहे हैं और उन्हीं के चबाए हुए निवाले खा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 159। हमारे सामने जो नई समस्याएं हैं उनकी ओर हम आँख उठाकर भी नहीं देखते। इन्हीं विचारों को अत्यंत प्रभावशाली और रोचक शब्दों में विस्तार के साथ प्रस्तुत करके आज़ाद ने यह अपील की कि हमारे कवियों को भी अपनी काल कोठरी के बाहर आना चाहिए और नए वातावरण में नए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। नई शिक्षा और नई सामाजिक चेतना के कारण जो बदलती हुई आर्थिक स्थिति का परिणाम था, उनके यह विचार व्यर्थ नहीं गए और कुछ ही समय बीतने पर लाहौर में अंजुमने पंजाब की नींव पड़ी और 8 मई 1874 ईस्वी को वह पहला यादगार मुशायरा हुआ जिसमें नए ढंग की कविताएं पढ़ी गईं। पहले मौलाना आज़ाद ने एक बहुत सुंदर और अत्यंत ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया और फिर कविता में वास्तविकता से काम लेने, स्थानीय रंग पैदा करने और जीवन का सच्चा चित्रण करने का अनुरोध किया और कहा कि हम कोयल, चंपा और चमेली, अर्जुन और भीम, गंगा और यमुना, हिमालय और अन्य स्थानीय वस्तुओं को बिल्कुल भूल गए हैं। अब इस बात की आवश्यकता है कि हम उनकी ओर भी पूरा ध्यान दें। वह उन परंपराओं से विमुख नहीं होना चाहते थे जो पूर्व से चली आ रही थीं। उनका विचार था कि कविता को उस जीवन के नेतृत्व का भार स्वीकार करना चाहिए जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। इस व्याख्यान के बाद आज़ाद ने एक कविता पढ़ी जो रात्रि के विभिन्न रूपों का चित्रण करती थी। आज़ाद कोई असाधारण कवि नहीं थे, परंतु एक नई शैली के जन्मदाता होने के कारण उनका बड़ा महत्व है। लाहौर के इन मुशायरों ने मौलाना हाली को भी अपनी ओर खींचा और उन्होंने अपनी कुछ महान रचनाएं इसी के लिए लिखीं और थोड़े ही समय में यह नया ढंग सारे भारत में फैल गया। जब किसी कार्य के लिए ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से उचित भूमि तैयार हो जाती है तो उसके फलने फूलने में देर नहीं लगती। उस समय का भारत इसके लिए तैयार हो गया था कि उसमें राष्ट्रीय विचार और देशभक्ति की भावना प्रकट की जाए और गदर के बाद निराशा की जो लहर फैली है उसे मिटाया जाए। इसलिए रूढ़िवादियों के विरोध के बावजूद नए साहित्य ने जन्म ले ही लिया। आज़ाद की कविताओं का एक संग्रह नज़्म आज़ाद के नाम से प्रकाशित हो चुका है। उसमें उनके वह दोनों भाषण भी सम्मिलित हैं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। आज़ाद कविता में यौग के शिष्य थे और आरंभ में समयानुकूल परंपरा के अनुसार गज़लें लिखते थे, कुछ कसीदे और मरसिये भी लिखे हैं, परंतु जो कुछ उनकी शक्ति है उनकी इन नई कविताओं में है जिनका उल्लेख हो चुका है। अंत में जब आज़ाद की मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी तो उन्होंने सूफियाना ढंग की गज़लें दोबारा लिखना शुरू की जिनमें से अधिकतर नष्ट हो गईं। उदाहरण के लिए उनकी एक कविता के दो बंद दिए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 160 है, सामने खुला हुआ मैदा चले चलो, बागे मुराद है समर आफ सा चले चलो, दरिया हो बीच में की बयाबा चले चलो, है सामने खुला हुआ मैदा चले चलो, बागे मुराद है समर आफ सा चले चलो, दरिया हो बीच में की बयाबा चले चलो, हिम्मत एकह रही है खड़ी हाँ चले चलो, चलना ही मस लहत है मेरी जहाँ चले चलो, हिम्मत के शाह सवार जो घोड़े उठाएंगे, दुश्मन फलक भी होंगे तो सर झुकाएंगे, तूफान बुलबुलों की तरह बैठ जाएंगे, नेकी के दौर उठ के वदी को दबाएंगे, बैठो न तुम मगर किसी उनवा चले चलो। इस युग के सबसे बड़े कवि मौलाना हाली थे और सच यह है कि उन्होंने ही नए साहित्य की नींव दृढ़ की। वह 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए। उनका नाम ख्वाजा अल्ताफ हुसैन था। अभी 9 वर्ष के भी ना हुए थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। माँ पहले ही मानसिक रोग से ग्रस्त थीं, इसलिए हाली को उनके भाइयों ने पाला। उन्हीं की देखरेख में उनकी शिक्षा हुई। थोड़े ही समय में उन्होंने अरबी फारसी की प्रचलित पुस्तकें पढ़ डाली, परंतु अभी वह केवल 17 वर्ष के थे कि भाइयों ने विवाह का फंदा गले में डाल दिया। यह हाली के लिए एक कड़ा बंधन सिद्ध हुआ क्योंकि वह अभी और शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन जब पत्नी घर में आ गई तो उन्हें यह चिंता भी हुई कि अधिक बोझ भाइयों पर न डालें। हाली के सौभाग्य से उनकी धर्मपत्नी का परिवार आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। उन्होंने इस स्थिति से लाभ उठाया और एक दिन जब उनकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी, खाली बिना किसी को बताए हुए चुपके से पैदल दिल्ली चल दिए और बड़ी दीनता से दिल्ली के विद्वानों के संग शिक्षा प्राप्त करने लगे। यह वह समय था जब दिल्ली कॉलेज स्थापित हो चुका था और उसमें बहुत से लोग नई शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, परंतु हाली उसमें दाखिल ना हो सके। दिल्ली ही में उन्होंने पहले पहल अरबी में एक छोटी सी पुस्तक एक धार्मिक विषय पर लिखी और यह उनके उस जीवन का आरंभ था जिसे हम एक सच्चे साहित्यकार का जीवन कह सकते हैं। उनकी गद्य रचनाओं का वर्णन आगे आएगा। यहाँ केवल इस क्रमबद्ध कहानी को टूटने से बचाने के लिए उनकी रचनाओं के नाम ले लिए जाएंगे। अभी गदर नहीं हुआ था और दिल्ली अपनी अंतिम शोभा और बहार दिखा रही थी। बड़े बड़े कवि और विद्वान वहाँ मौजूद थे जिनमें मिर्जा गालिब का नाम और सम्मान सबसे अधिक था। हाली ने कविताएं लिखना आरंभ कर दिया था। वह किसी प्रकार गालिब के पास पहुँचे और अपनी कविताएं सुनाई। पृष्ठ संख्या 161। 17-18 साल के एक नवयुवक की सुंदर गजलें सुनकर गालिब चौंक पड़े और कहा कि मैं किसी को काव्य रचना में समय गंवाने की सम्मति नहीं देता, परंतु तुम्हारे प्रति मेरा यह विचार है कि अगर तुम कविताएं न लिखोगे तो अत्याचार करोगे। अब क्या था, हाली का साहस बढ़ा और वह दिल्ली के मुशायरों में भाग लेने लगे। घर वालों को पता चला कि वह दिल्ली में है तो जाकर उन्हें पानीपत वापस लाए। 1856 ईस्वी में जीविका प्राप्त करने के लिए घर से निकले और हिसार डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में नौकरी कर ली। अभी कुछ दिन ना बीते थे कि गदर हो गया और हाली बड़ी कठिनाई से जान बचाकर पानीपत से भागे, पर उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और जीवन भर उससे पीछा न छूटा। घर पहुंचकर उन्होंने फिर अपनी शिक्षा की ओर ध्यान दिया और स्वयं पुस्तकावलोकन करके अपनी योग्यता बढ़ाते रहे। गदर समाप्त हुआ तो फिर जीविका की चिंता हुई और दिल्ली पहुंचे। यहाँ उनकी भेंट सेवता से हुई और उन्होंने अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा के लिए हाली को नौकर रख लिया। नौकरी तो केवल एक बहाना थी। सेवता स्वयं हाली के संग कविता और साहित्य की बातें करते थे और हाली ने सेवता के ज्ञान और आलोचनात्मक स्वभाव से अपूर्व शक्ति ग्रहण की। 1869 ईस्वी में सेवता और गालिब दोनों की मृत्यु हो गई और हाली के लिए दिल्ली उजड़ गई। उनके जीवन ने पलटा खाया और उन्होंने लाहौर का रास्ता पकड़ा। वहाँ पंजाब गवर्नमेंट बुक डिपो में उन्हें एक छोटी सी नौकरी मिल गई। वहाँ उनका काम अंग्रेजी से अनुवाद की हुई पुस्तकों की भाषा सुधार देना भी था। 4 वर्ष यह काम करते रहे। हाली ने इस संबंध में स्वयं लिखा है कि उन्होंने एक नया प्रकाश देखा और उन्हें अंग्रेजी साहित्य के बहुत से गुणों में आकर्षणपूर्ण शक्ति दिखाई दी। इसके प्रतिकूल फारसी और उर्दू कविताओं की आलोचना में आनंद प्राप्त होने लगा। हाली अंग्रेजी बहुत कम जानते थे, परंतु उन्होंने उसकी अच्छाइयों को हृदयंगम कर लिया था। ठीक उसी समय आज़ाद के स्थापित किए हुए नए मुशायरे भी हो रहे थे और हाली पूर्णतया इस नए साहित्यिक आंदोलन में सम्मिलित हो गए और उनमें वह महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ जिसने साहित्य और कविता के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल दिया। लाहौर में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह दिल्ली चले आए। यहाँ उनको दिल्ली कॉलेज में नौकरी मिल गई और दिल्ली में रहने की उनकी इच्छा पूरी हुई। उस समय तक वह कई महान कविताएं और कई गद्य की पुस्तकें लिख चुके थे। यहाँ केवल उनकी पद्य रचनाओं के संबंध में कुछ संकेत किए जाएंगे। दिल्ली के निवास काल में उनसे सर सैयद से भेंट हुई, जो गदर के बाद से मुसलमानों के एक बड़े नेता गिने जाने लगे थे। उन्होंने हाल ही से मुसलमानों के उत्थान और पतन पर एक कविता लिखने का अनुरोध किया और हाल ही ने अपनी सुविख्यात रचना मद्दो यजरे इस्लाम 1879 ईस्वी में लिखी, जो मुसद्दसे हाली के नाम से भी प्रसिद्ध है। पृष्ठ संख्या 162। वैसे तो हाली सर सैयद की स्थापित की हुई मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशनों में कविताएं पढ़ा ही करते थे, परंतु इस मुख्य रचना ने उनका सुयश चारों ओर फैला दिया। 1887 ईस्वी में उन्होंने अपनी दूसरी कविता मुनाजाते बेवा लिखी और इसी प्रकार बराबर ऐसी कविताएं लिखते रहे जो समाज के नैतिक सुधार और पुनर्जीवन से संबंध रखती हैं। मुसद्दस तो 25 बार प्रकाशित हो चुका है। उसके अतिरिक्त उनकी कविताओं के न जाने कितने संस्करण अन्य संग्रहों में निकल चुके हैं। दीवाने हाल ही में उनकी गजलें और छोटी छोटी दूसरी कविताएं, मजजू ए नज्म हाली में उनकी दूसरी बड़ी कविताएं एकत्र कर दी गई हैं और सभी लंबी कविताएं अलग अलग प्रकाशित हो चुकी हैं। हाली ने अपने संग्रहों की भूमिकाओं में अपने उद्देश्य और विचारों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया है। इससे उनके अध्ययन में बड़ी सुविधा होती है। अंत में मौलाना हाली को हैदराबाद दरबार से एक प्रकार की साहित्य वृत्ति मिलने लगी थी और वह संतोषपूर्वक साहित्य रचना में लगे रहे। 1904 ईस्वी में उन्हें शम्सुल उलमा की उपाधि मिली, जिसको उन्होंने स्वीकार तो कर लिया परंतु प्रसन्न न हुए। 1914 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। जैसा कि उस समय की रीति थी, हाली ने भी आरंभ में गजलें लिखी। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि वह मीर गालिब और सेफ्ता से प्रभावित थे। यह तीनों कवि गजल के वास्तविक और हार्दिक भाव को अत्यंत गंभीरता और सुंदरता से प्रस्तुत करते हैं, इसलिए हाली की गजलें भी बड़ी सुंदर होती हैं। उनके शेर दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं। मनोभाव और प्रेम की अनुभूतियों का ऐसा आकर्षक उल्लेख होता है कि उनके सरल शब्दों में बिजलियां छुपी हुई जान पड़ती हैं। यह सारी बातें आरंभ काल में थी। नई कविता से संबंध जोड़ने के बाद उन्होंने गजलों में भी नैतिक सुधार और राष्ट्रीय उन्नति का वर्णन आरंभ कर दिया। उनकी बड़ी कविताओं में मुसद्दस, मुनाजाते विवाह, वर्खा रुत, हुब्बे वतन, चुप की दाद इत्यादि सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में गिनी जाती हैं। इनके अध्ययन से केवल हाली की सहृदयता और गंभीरता का पता ही नहीं मिलता, बल्कि उस समय के भारत में सुधार और उन्नति की जो उत्साहपूर्ण लहर दौड़ रही थी, उसका चित्र भी आंखों के सामने खिंच जाता है। उन्होंने कहीं अपनी इस भावना को छिपाया नहीं है कि वह कविता से देश के जगाने का काम लेना चाहते थे। हाली मुसलमानों के मध्यम वर्ग से संबंध रखते थे और उस समय इस वर्ग की समस्याएं बहुत जटिल रूप धारण कर चुकी थीं। नए आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करके और नई शिक्षा प्राप्त करके प्राचीन परंपराओं से नाता तोड़ लेने की इच्छा पैदा होती थी और कोई क्रांतिकारी दृष्टिकोण ना होने के कारण उन्नति की यह भावना केवल एक प्रकार के सुधारवाद में सीमित होकर रह जाती थी। इसलिए हाली की चेतना भी द्वैत में फंसी हुई दिख पड़ती है। वह देशभक्त और राजभक्त दोनों ही बनना चाहते थे। इसमें पृष्ठ संख्या 163, संदेह नहीं कि उस समय राजभक्ति ही की आड़ में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता था, क्योंकि गदर के बाद मुसलमानों में जो नैराश्य फैला था, उससे बाहर निकलना केवल इसी तरह संभव था कि नए जीवन को स्वीकार कर लिया जाए और अंग्रेजों से लड़कर नहीं, उन्हें अपनी राजभक्ति का विश्वास दिलाकर उनसे अपने लिए अधिकार प्राप्त किए जाएं।